University of Cambridge International Examinations. International General Certificate of Secondary Education. March 2016, examination in Hindi as a second language. Paper 2, listening comprehension. Turn over now.
अभ्यास 1, प्रश्न 1 से 6. प्रश्न 1 से 6 के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद 2 बार सुनाया जाएगा.
संवाद 1.
हेलो पायल और पल्लव, माफ करें, इस वक्त हम फोन पर नहीं आ सकते. कृपया बीप के बाद अपना नाम और फोन नंबर रिकॉर्ड कर दें. हम समय मिलते ही आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे. यदि आप कोई संकटकालीन संदेश देना चाहते हैं तो मेहरबानी करके मेरे या पल्लव के मोबाइल पर फोन कर संपर्क करें. धन्यवाद.
संवाद 2.
भाई साहब, इस सप्ताह की रविवार पत्रिका मिलेगी?
माफ कीजिए, रविवार तो कल तक आएगी. आउटलुक और टुडे दे सकता हूँ?
नहीं, रविवार ने इस सप्ताह होली विशेषांक निकाला है, वह चाहिए था.
और कुछ देख लीजिए, मेरे पास सरिता और कादम्बिनी के नए अंक भी हैं.
नहीं, बस आज का भास्कर और नवभारत दे दीजिए.
ये लीजिए, 5 रुपए हो गए.
संवाद 3.
छात्रों, आज हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय और कुतुब मीनार की यात्रा का दिन है. हमारी बस विद्यालय परिसर से 9 बजे रवाना होगी और कुतुब मीनार से हम शाम 6 बजे लौट आएंगे. दोपहर की भोजन की व्यवस्था विद्यालय ने कर दी है. अपने साथ पीने का पानी और खाने के लिए कुछ फल लेना न भूलें. अपने कैमरे और दूसरे कीमती सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी अपनी है. किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो अध्यापकों से संपर्क करें.
संवाद 4.
नमस्कार बहन जी, कहिए क्या दिखाऊं?
जी नमस्कार, घर के लिए किनारी वाली सादी साड़ियां दिखा दीजिए.
किस तरह की साड़ी चलेगी, बंगाली, पटोला, मराठी या कांजीवरम?
किसी भी शैली की हो, पर सूती होनी चाहिए ताकि धोने में आसानी रहे.
तब तो बंगाली और पटोला साड़ियां दिखा देता हूं.
संवाद 5.
ब्राजील के विश्व कप में घुटने की चोट के बावजूद खेल रहे पुर्तगाल के विंगर रोनाल्डो का जलवा तो नहीं नजर आया, लेकिन बीच बीच में उनकी रॉकेट जैसी रफ्तार दर्शकों को सन्न जरूर करती रही. अमेरिका के खिलाफ भी कप्तान रोनाल्डो ने कुछ ऐसा ही किया. खेल समाप्ति से ठीक आधे मिनट पहले उन्होंने दाहिने कोने से इतना अचूक पास दिया जिसमें वरेला को सिर्फ अपना सिर अड़ाना था. वरेला ने वही किया और अमरीकी गोलकीपर टिम हॉवर्ड खड़े के खड़े रह गए.
संवाद 6.
नमस्कार, आप व्यावसायिक काम से भारत आई हैं या निजी यात्रा पर?
जी निजी यात्रा पर, एक शादी में जाना है.
कहाँ है शादी?
जी, अमृतसर में।
तो फिर आप बंगलुरु क्यों आई हैं?
इसलिए क्योंकि बारात बंगलुरु से जाएगी।
आ, तो आप दूल्हे की तरफ से हैं। हमारी ओर से शुभकामनाएं।
धन्यवाद। अभ्यास एक के इन संवादों को अब आप फिर से सुनेंगे।
संवाद एक।
हेलो पायल और पल्लव, माफ करें, इस वक्त हम फोन पर नहीं आ सकते। कृपया बीप के बाद अपना नाम और फोन नंबर रिकॉर्ड कर दें। हम समय मिलते ही आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यदि आप कोई संकटकालीन संदेश देना चाहते हैं तो मेहरबानी करके मेरे या पल्लव के मोबाइल पर फोन कर संपर्क करें। धन्यवाद।
संवाद दो।
भाई साहब, इस सप्ताह की रविवार पत्रिका मिलेगी?
माफ कीजिए, रविवार तो कल तक आएगी। आउटलुक और टुडे दे सकता हूँ?
नहीं, रविवार ने इस सप्ताह होली विशेषांक निकाला है, वह चाहिए था।
और कुछ देख लीजिए, मेरे पास सरिता और कादम्बिनी के नए अंक भी हैं।
नहीं, बस आज का भास्कर और नवभारत दे दीजिए।
ये लीजिए, 5 रुपए हो गए।
संवाद तीन।
छात्रों, आज हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय और कुतुब मीनार की यात्रा का दिन है। हमारी बस विद्यालय परिसर से 9 बजे रवाना होगी और कुतुब मीनार से हम शाम 6 बजे लौट आएंगे। दोपहर की भोजन की व्यवस्था विद्यालय ने कर दी है। अपने साथ पीने का पानी और खाने के लिए कुछ फल लेना न भूलें। अपने कैमरे और दूसरे कीमती सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो अध्यापकों से संपर्क करें।
संवाद चार।
नमस्कार बहन जी, कहिए क्या दिखाऊं?
जी नमस्कार, घर के लिए किनारी वाली सादी साड़ियां दिखा दीजिए।
किस तरह की साड़ी चलेगी? बंगाली, पटोला, मराठी या कांजीवरम?
किसी भी शैली की हो, पर सूती होनी चाहिए ताकि धोने में आसानी रहे।
तब तो बंगाली और पटोला साड़ियां दिखा देता हूँ।
संवाद पांच।
ब्राजील के विश्व कप में घुटने की चोट के बावजूद खेल रहे पुर्तगाल के विंगर रोनाल्डो का जलवा तो नहीं नजर आया, लेकिन बीच बीच में उनकी रॉकेट जैसी रफ्तार दर्शकों को सन्न जरूर करती रही। अमेरिका के खिलाफ भी कप्तान रोनाल्डो ने कुछ ऐसा ही किया। खेल समाप्ति से ठीक आधे मिनट पहले उन्होंने दाहिने कोने से इतना अचूक पास दिया जिसमें वरेला को सिर्फ अपना सिर अड़ाना था। वरेला ने वही किया और अमरीकी गोलकीपर टिम हॉवर्ड खड़े के खड़े रह गए।
संवाद छह।
नमस्कार, आप व्यावसायिक काम से भारत आई हैं या निजी यात्रा पर?
जी, निजी यात्रा पर, एक शादी में जाना है।
कहाँ है शादी?
जी, अमृतसर में।
तो फिर आप बंगलुरु क्यों आई हैं?
इसलिए क्योंकि बारात बंगलुरु से जाएगी।
आ, तो आप दूल्हे की तरफ से हैं। हमारी ओर से शुभकामनाएं।
धन्यवाद। यह अभ्यास एक का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास दो सुनेंगे। अब आप अभ्यास दो के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास दो, प्रश्न सात। मिट्टी कूल के आविष्कार पर प्रोफेसर सुनील गुप्ता से विज्ञान संवाददाता नेहा नागर की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों को भरिए। ये बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी।
प्रोफेसर सुनील गुप्ता, पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान के मंच पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद नेहा जी।
प्रोफेसर गुप्ता, आपकी संस्था ने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक दस्तकार की बिजली के बिना चलने वाला मिट्टी कूल नाम का फ्रिज बनाने में मदद की है। जरा बताइए कि यह कैसे काम करता है और इसका आविष्कार कैसे और किसने किया?
नेहा जी, मिट्टी कूल का आविष्कार और निर्माण मनसुख भाई प्रजापति ने किया है, जो गुजरात के वांकानेर कस्बे में रहते हैं। हमने तो केवल उनके आविष्कार के प्रचार और बिक्री में मदद की है।
लेकिन मनसुख भाई के मन में मिट्टी का फ्रिज बनाने का विचार कैसे आया?
मनसुख भाई का परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से उनको भी पारंपरिक धंधा ही अपनाना पड़ा। लेकिन 2001 में आए भूकंप में उनके परिवार के सारे मिट्टी के बर्तन टूट गए। अखबारों ने टूटे हुए मिट्टी के घड़ों की तस्वीरों के साथ लिखा कि शहरी लोगों के फ्रिज तो बिजली गुल हो जाने से बेकार हो गए हैं और देहात के फ्रिज या घड़े भूकंप के झटकों ने तोड़ दिए हैं। यही पढ़कर मनसुख भाई के मन में मिट्टी से घड़े बनाने की बजाय फ्रिज बनाने का विचार आया और वे इसकी कोशिशों में जुट गए।
परंतु इन कोशिशों में तो काफी पैसा और समय लगा होगा?
हाँ, समय तो उनका अपना था। कर्ज पर पैसा दिलाने में हमने मदद कर दी।
चलिए यह बताइए कि यह कैसे बनाया जाता है और कैसे काम करता है?
ये वाष्पीकरण के उसी सिद्धांत पर काम करता है जिस पर घड़ा काम करता है और पानी को ठंडा रखता है। घड़े के महीन रंध्रों से पानी रिसता रहता है और बाहर की सतह से भाप बनकर हवा में उड़ता रहता है, जिससे घड़े के भीतर पानी का तापमान ठंडा रहता है। वाष्पीकरण की इसी प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए मनसुख भाई ने अपने गांव से पीली, लाल और काली तीन तरह की मिट्टी को लेकर उसे मिलाया। फिर उसे नरम बनाने के लिए उसमें थोड़ा लकड़ी का बुरादा और रेत मिलाई और उसे फ्रिज का आकार दे दिया। उसके बाद उसे बर्तनों की तरह भट्टी में पकाया और फ्रिज तैयार हो गया। वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए इसके ऊपर और नीचे पानी की टंकियां बनाई गईं और दीवारों को दोहरा बनाया गया है।
क्या यह सचमुच भोजन को ठंडा रख सकता है?
मिट्टी कूल के भीतर का तापमान बाहर के तापमान की तुलना में 10 डिग्री कम रहता है, बशर्ते इसे हवादार जगह पर रखा जाए और तापमान में उमस या नमी न हो। रेगिस्तानी देहात के सूखे इलाकों के लिए ये बहुत उपयोगी है। इसके ऊपरी भाग में बनी टंकी में 10 लीटर पानी भरा जा सकता है। ये टंकी पानी को ठंडा तो रखती ही है, इसकी तलहटी से रिस कर पानी फ्रिज की दीवारों को गीला करता हुआ निचली टंकी तक जाता रहता है, जिससे दोनों टंकियों के बीच बने दो खानों में रखा गया दूध और भोजन कई दिनों तक ताजा रहता है।
मिट्टी कूल कितना सफल रहा है? क्या इसे लोग खरीद भी रहे हैं?
इसे भारत ही नहीं, विदेशों के लोग भी खरीद रहे हैं, क्योंकि इसकी कीमत केवल 6,000 रुपये है और इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसीलिए मनसुख भाई को इसके आविष्कार के लिए राष्ट्रीय सम्मान समेत कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इसकी सफलता से उत्साहित होकर मनसुख भाई अब मिट्टी कूल घर बनाने की भी सोच रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए हितकारी होगा।
गुप्ता जी, मिट्टी कूल की रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अभ्यास दो की ये बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे।
प्रोफेसर सुनील गुप्ता, पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान के मंच पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद नेहा जी।
प्रोफेसर गुप्ता, आपकी संस्था ने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक दस्तकार की बिजली के बिना चलने वाला मिट्टी कूल नाम का फ्रिज बनाने में मदद की है। जरा बताइए कि यह कैसे काम करता है और इसका आविष्कार कैसे और किसने किया?
नेहा जी, मिट्टी कूल का आविष्कार और निर्माण मनसुख भाई प्रजापति ने किया है, जो गुजरात के वांकानेर कस्बे में रहते हैं। हमने तो केवल उनके आविष्कार के प्रचार और बिक्री में मदद की है।
लेकिन मनसुख भाई के मन में मिट्टी का फ्रिज बनाने का विचार कैसे आया?
मनसुख भाई का परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से उनको भी पारंपरिक धंधा ही अपनाना पड़ा। लेकिन 2001 में आए भूकंप में उनके परिवार के सारे मिट्टी के बर्तन टूट गए। अखबारों ने टूटे हुए मिट्टी के घड़ों की तस्वीरों के साथ लिखा कि शहरी लोगों के फ्रिज तो बिजली गुल हो जाने से बेकार हो गए हैं और देहात के फ्रिज या घड़े भूकंप के झटकों ने तोड़ दिए हैं। यही पढ़कर मनसुख भाई के मन में मिट्टी से घड़े बनाने की बजाय फ्रिज बनाने का विचार आया और वे इसकी कोशिशों में जुट गए।
परंतु इन कोशिशों में तो काफी पैसा और समय लगा होगा।
हाँ, समय तो उनका अपना था, कर्ज पर पैसा दिलाने में हमने मदद कर दी।
चलिए यह बताइए कि यह कैसे बनाया जाता है और कैसे काम करता है।
ये वाष्पीकरण के उसी सिद्धांत पर काम करता है जिस पर घड़ा काम करता है और पानी को ठंडा रखता है। घड़े के महीन रंध्रों से पानी रिसता रहता है और बाहर की सतह से भाप बनकर हवा में उड़ता रहता है, जिससे घड़े के भीतर पानी का तापमान ठंडा रहता है। वाष्पीकरण की इसी प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए मनसुख भाई ने अपने गांव से पीली, लाल और काली तीन तरह की मिट्टी को लेकर उसे मिलाया। फिर उसे नरम बनाने के लिए उसमें थोड़ा लकड़ी का बुरादा और रेत मिलाई और उसे फ्रिज का आकार दे दिया। उसके बाद उसे बर्तनों की तरह भट्टी में पकाया और फ्रिज तैयार हो गया। वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए इसके ऊपर और नीचे पानी की टंकियां बनाई गईं और दीवारों को दोहरा बनाया गया है।
क्या यह सचमुच भोजन को ठंडा रख सकता है?
मिट्टी कूल के भीतर का तापमान बाहर के तापमान की तुलना में 10 डिग्री कम रहता है, बशर्ते इसे हवादार जगह पर रखा जाए और तापमान में उमस या नमी न हो। रेगिस्तानी देहात के सूखे इलाकों के लिए ये बहुत उपयोगी है। इसके ऊपरी भाग में बनी टंकी में 10 लीटर पानी भरा जा सकता है। ये टंकी पानी को ठंडा तो रखती ही है, इसकी तलहटी से रिस कर पानी फ्रिज की दीवारों को गीला करता हुआ निचली टंकी तक जाता रहता है, जिससे दोनों टंकियों के बीच बने दो खानों में रखा गया दूध और भोजन कई दिनों तक ताजा रहता है।
मिट्टी कूल कितना सफल रहा है? क्या इसे लोग खरीद भी रहे हैं?
इसे भारत ही नहीं, विदेशों के लोग भी खरीद रहे हैं, क्योंकि इसकी कीमत केवल 6,000 रुपये है और इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसीलिए मनसुख भाई को इसके आविष्कार के लिए राष्ट्रीय सम्मान समेत कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इसकी सफलता से उत्साहित होकर मनसुख भाई अब मिट्टी कूल घर बनाने की भी सोच रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए हितकारी होगा।
गुप्ता जी, मिट्टी कूल की रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अभ्यास दो अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास तीन सुनेंगे। अब आप अभ्यास तीन के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास तीन, प्रश्न 8-13। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिनिधि डॉक्टर प्रभा सुंदरम के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन पंत की बातचीत को ध्यान से सुनिए और दिए गए प्रत्येक कथन को पढ़कर बताइए कि कथन सही है या गलत। अपना उत्तर उपयुक्त खाने में सही का निशान लगाकर दीजिए। यह बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी।
डॉक्टर प्रभा सुंदरम, जीवन और स्वास्थ्य के मंच पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद हर्ष जी।
प्रभा जी, सुना है वैज्ञानिकों ने मलेरिया के रोकथाम की कोई नई तरकीब निकाली है।
हर्ष जी, वास्तव में यह मच्छरों की आबादी पर अंकुश लगाने की तरकीब है। मलेरिया का कीटाणु चूंकि मच्छरों के शरीर में ही पनपता है और वे ही इसको फैलाते हैं, इसलिए अगर उनकी संख्या पर नियंत्रण कर लिया जाए तो मलेरिया पर भी नियंत्रण हो सकता है।
तो क्या है ये तरकीब? क्या कोई नई मच्छर मारने वाली दवा है और उसकी खोज का श्रेय किसे जाता है?
नहीं, मच्छर मारने वाली दवाएं तो थोड़े ही समय में बेअसर हो जाती हैं, क्योंकि मच्छरों के शरीर में इन दवाओं को सहन करने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसलिए मच्छरों के जीन में कुछ ऐसे फेरबदल किए जा रहे हैं जिनसे उनकी आबादी नियंत्रित हो सके।
यानी मच्छरों का परिवार नियोजन? परंतु क्या दुनिया भर के मच्छरों के जीन बदले जा सकेंगे?
यह निश्चित रूप से एक बेहद कठिन काम है। इसे आसान बनाने के लिए लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने एक नई तरकीब सोची है। वे नर मच्छरों के पैदा होते ही उनके शरीर में एक ऐसा एंजाइम डालते हैं जो उनकी मादा मच्छरों को पैदा करने की क्षमता को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वयस्क होने पर जब ये नर मच्छर मादा मच्छरों के साथ बच्चे पैदा करने की क्रिया में जुड़ते हैं तो केवल नर मच्छर ही पैदा होते हैं, मादा मच्छर नहीं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह सिलसिला एक बार शुरू हो जाने के बाद कुछ ही समय में मादा मच्छरों की आबादी घटकर समाप्त होने लगेगी।
मान लिया कि इस तरकीब से मादा मच्छरों की आबादी समाप्त भी हो गई तो भी उससे मलेरिया पर नियंत्रण कैसे होगा?
हर्ष जी, मलेरिया का कीटाणु केवल मादा मच्छरों में ही पलता है और उनके काटने से ही फैलता है। काटने का काम भी मादा मच्छर ही करती हैं, इसलिए यदि उनकी संख्या घटकर समाप्त हो जाती है तो एक तो मलेरिया का फैलाव नहीं होगा और दूसरे मादा मच्छरों के न रहने से मच्छर धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे।
तरकीब तो बड़ी अच्छी लग रही है प्रभा जी, लेकिन इसे मंजूरी मिलने और कामयाब होने में कितना समय लगेगा?
अभी तो प्रयोगशालाओं में परीक्षण चल रहे हैं। यह एक प्राकृतिक कीट के जीन में फेरबदल करने का काम है, इसलिए इसे मंजूरी मिलने और फिर खुले वातावरण में कामयाब होने में कम से कम 10 साल तो लग ही सकते हैं। तब तक मच्छर भगाने वाली दवाओं और आधुनिक मच्छरदानियों से ही काम चलाना होगा।
डॉक्टर प्रभा सुंदरम, जीवन और स्वास्थ्य के मंच पर आने का समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद हर्ष जी।
अभ्यास तीन की ये बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। डॉक्टर प्रभा सुंदरम, जीवन और स्वास्थ्य के मंच पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद हर्ष जी।
प्रभा जी, सुना है वैज्ञानिकों ने मलेरिया के रोकथाम की कोई नई तरकीब निकाली है।
हर्ष जी, वास्तव में यह मच्छरों की आबादी पर अंकुश लगाने की तरकीब है। मलेरिया का कीटाणु चूंकि मच्छरों के शरीर में ही पनपता है और वे ही इसको फैलाते हैं, इसलिए अगर उनकी संख्या पर नियंत्रण कर लिया जाए तो मलेरिया पर भी नियंत्रण हो सकता है।
तो क्या है ये तरकीब? क्या कोई नई मच्छर मारने वाली दवा है और उसकी खोज का श्रेय किसे जाता है?
नहीं, मच्छर मारने वाली दवाएं तो थोड़े ही समय में बेअसर हो जाती हैं, क्योंकि मच्छरों के शरीर में इन दवाओं को सहन करने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसलिए मच्छरों के जीन में कुछ ऐसे फेरबदल किए जा रहे हैं जिनसे उनकी आबादी नियंत्रित हो सके।
यानी मच्छरों का परिवार नियोजन? परंतु क्या दुनिया भर के मच्छरों के जीन बदले जा सकेंगे?
यह निश्चित रूप से एक बेहद कठिन काम है। इसे आसान बनाने के लिए लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने एक नई तरकीब सोची है। वे नर मच्छरों के पैदा होते ही उनके शरीर में एक ऐसा एंजाइम डालते हैं जो उनकी मादा मच्छरों को पैदा करने की क्षमता को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वयस्क होने पर जब ये नर मच्छर मादा मच्छरों के साथ बच्चे पैदा करने की क्रिया में जुड़ते हैं तो केवल नर मच्छर ही पैदा होते हैं, मादा मच्छर नहीं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह सिलसिला एक बार शुरू हो जाने के बाद कुछ ही समय में मादा मच्छरों की आबादी घटकर समाप्त होने लगेगी।
मान लिया कि इस तरकीब से मादा मच्छरों की आबादी समाप्त भी हो गई तो भी उससे मलेरिया पर नियंत्रण कैसे होगा?
हर्ष जी, मलेरिया का कीटाणु केवल मादा मच्छरों में ही पलता है और उनके काटने से ही फैलता है। काटने का काम भी मादा मच्छर ही करती हैं, इसलिए यदि उनकी संख्या घटकर समाप्त हो जाती है तो एक तो मलेरिया का फैलाव नहीं होगा और दूसरे मादा मच्छरों के न रहने से मच्छर धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे।
तरकीब तो बड़ी अच्छी लग रही है प्रभा जी, लेकिन इसे मंजूरी मिलने और कामयाब होने में कितना समय लगेगा?
अभी तो प्रयोगशालाओं में परीक्षण चल रहे हैं। यह एक प्राकृतिक कीट के जीन में फेरबदल करने का काम है, इसलिए इसे मंजूरी मिलने और फिर खुले वातावरण में कामयाब होने में कम से कम 10 साल तो लग ही सकते हैं। तब तक मच्छर भगाने वाली दवाओं और आधुनिक मच्छरदानियों से ही काम चलाना होगा।
डॉक्टर प्रभा सुंदरम, जीवन और स्वास्थ्य के मंच पर आने का समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद हर्ष जी।
अभ्यास तीन अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास चार सुनेंगे। अब आप अभ्यास चार के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास चार, प्रश्न 14 से 21। राजस्थान के खाने पर पाकशास्त्री और इतिहासकार मिठाईलाल जोशी के विचारों को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये विचार आपको 2 बार सुनाए जाएंगे।
नमस्कार, मैं हूं मिठाईलाल जोशी। राजस्थान का भोजन आज राजस्थान की सरहद का न होकर लगभग सभी का पसंदीदा बन चुका है। ये खाना शाही खानसामों की देन है, जो पीढ़ियों से अपने उसी जायके और रूप रंग के साथ ज्यों का त्यों चला आ रहा है। राजस्थान के हर एक क्षेत्र की अपनी खास पाक शैली रही है और राजपूत खानदानों में उसकी शानो शौकत अभी भी वैसी ही है। राजस्थानी भोजन बनाने के तौर तरीके मध्यकालीन राजस्थान की जीवन शैली से प्रभावित हैं। उस जमाने के खाने में अपने क्षेत्र में मिलने वाले मिर्च मसालों का पुट होता था। खाने की ऐसी चीजों को प्राथमिकता दी जाती थी जो कई दिनों तक खराब नहीं होती थी और जिन्हें गर्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। यानी सवाल जरूरत का था, पसंद का नहीं। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के रसोइये कम से कम पानी का इस्तेमाल करते थे क्योंकि साफ पानी की किल्लत थी। पानी की बजाय दूध, लस्सी और देसी घी उपयोग में लाया जाता था। माहेश्वरी लोग टमाटर के विकल्प के रूप में आम के चूर्ण का अनूठा प्रयोग करते थे क्योंकि टमाटर रेगिस्तान में ज्यादा उपलब्ध नहीं था। इसी तरह प्याज और लहसुन की बजाय हींग का उपयोग होता था। समय बीत गया पर राजस्थानी भोजन ने अपनी गरिमा और लोकप्रियता नहीं खोई। शायद ही कोई 5 सितारा होटल ऐसा होगा जिसने राजस्थानी खाने का उत्सव न लगाया हो। एक खानसामी ने इस बात को माना है कि शायद ही कोई भोजन प्रेमी होगा जिसने कभी न कभी दाल बाटी चूरमे का लुत्फ न उठाया हो। तीखी दाल के चटपटेपन को संतुलित करने के लिए साथ में चूरमा दिया जाना अपने आप में अनूठा है। इसे शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। गट्टे की सब्जी यहाँ की एक और विशेषता है। राजस्थानी तरकारियां देखने में तो सुर्ख लाल लगती हैं पर जितनी तीखी वो दिखती हैं उतनी होती नहीं। जहां तक दालों का सवाल है तो 2 दालों से तैयार दाल रजवाड़ी, 3 दालों से बनी दाल त्रिपोलिया और 5 दालों से बनी दाल पंचमेल का कोई मेल नहीं। ढेर सारे पुदीने से तैयार पुदीना पनीर के साथ साथ केसर की पत्तियों के इस्तेमाल से बना केसरी पनीर भी लोग खूब पसंद करते हैं। यहाँ के व्यंजनों में प्याज, टमाटर, हींग और लाल मिर्च का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। सरसों का तेल कम और देसी घी का प्रयोग अधिक होता है। पकाने में तलने का प्रयोग भी कम किया जाता है। लोग मानते हैं कि राजस्थान के सभी लोग शाकाहारी होते हैं जबकि ऐसा है नहीं। वास्तव में जंगली मांस महाराजाओं का पसंदीदा रहा है। ताजा मार कर लाए गए शिकार को केवल देसी घी और लाल मिर्च में पकाया जाता था। खड्ड मुर्ग भी यहां की एक खासियत है। इसे खड्ड यानी जमीन के गड्ढे में पकाया जाता था। राजस्थान अपने चटपटे खाने की विविधता के लिए ही नहीं बल्कि मिठाइयों की विविधता के लिए भी जाना जाता है। वहां की पारंपरिक मिठाई तो लप्सी है जो आटे और गुड़ से बनती है, लेकिन विभिन्न अंचल अपनी मावा कचौड़ी और घेवर जैसी मिठाइयों के लिए मशहूर हैं।
अभ्यास 4 के ये विचार अब आप फिर से सुनेंगे।
नमस्कार, मैं हूं मिठाई लाल जोशी। राजस्थान का भोजन आज राजस्थान की सरहद का न होकर लगभग सभी का पसंदीदा बन चुका है। ये खाना शाही खानसामों की देन है, जो पीढ़ियों से अपने उसी जायके और रूप रंग के साथ ज्यों का त्यों चला आ रहा है। राजस्थान के हर एक क्षेत्र की अपनी खास पाक शैली रही है और राजपूत खानदानों में उसकी शानो शौकत अभी भी वैसी ही है। राजस्थानी भोजन बनाने के तौर तरीके मध्यकालीन राजस्थान की जीवन शैली से प्रभावित हैं। उस जमाने के खाने में अपने क्षेत्र में मिलने वाले मिर्च मसालों का पुट होता था। खाने की ऐसी चीजों को प्राथमिकता दी जाती थी जो कई दिनों तक खराब नहीं होती थी और जिन्हें गर्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। यानी सवाल जरूरत का था, पसंद का नहीं। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के रसोइये कम से कम पानी का इस्तेमाल करते थे क्योंकि साफ पानी की किल्लत थी। पानी की बजाय दूध, लस्सी और देसी घी उपयोग में लाया जाता था। माहेश्वरी लोग टमाटर के विकल्प के रूप में आम के चूर्ण का अनूठा प्रयोग करते थे क्योंकि टमाटर रेगिस्तान में ज्यादा उपलब्ध नहीं था। इसी तरह प्याज और लहसुन की बजाय हींग का उपयोग होता था। समय बीत गया पर राजस्थानी भोजन ने अपनी गरिमा और लोकप्रियता नहीं खोई। शायद ही कोई 5 सितारा होटल ऐसा होगा जिसने राजस्थानी खाने का उत्सव न लगाया हो। एक खानसामी ने इस बात को माना है कि शायद ही कोई भोजन प्रेमी होगा जिसने कभी न कभी दाल बाटी चूरमे का लुत्फ न उठाया हो। तीखी दाल के चटपटेपन को संतुलित करने के लिए साथ में चूरमा दिया जाना अपने आप में अनूठा है। इसे शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। गट्टे की सब्जी यहाँ की एक और विशेषता है। राजस्थानी तरकारियां देखने में तो सुर्ख लाल लगती हैं पर जितनी तीखी वो दिखती हैं उतनी होती नहीं। जहां तक दालों का सवाल है तो 2 दालों से तैयार दाल रजवाड़ी, 3 दालों से बनी दाल त्रिपोलिया और 5 दालों से बनी दाल पंचमेल का कोई मेल नहीं। ढेर सारे पुदीने से तैयार पुदीना पनीर के साथ साथ केसर की पत्तियों के इस्तेमाल से बना केसरी पनीर भी लोग खूब पसंद करते हैं। यहाँ के व्यंजनों में प्याज, टमाटर, हींग और लाल मिर्च का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। सरसों का तेल कम और देसी घी का प्रयोग अधिक होता है। पकाने में तलने का प्रयोग भी कम किया जाता है। लोग मानते हैं कि राजस्थान के सभी लोग शाकाहारी होते हैं जबकि ऐसा है नहीं। वास्तव में जंगली मांस महाराजाओं का पसंदीदा रहा है। ताज़ा मार कर लाए गए शिकार को केवल देसी घी और लाल मिर्च में पकाया जाता था। खड्ड मुर्ग भी यहाँ की एक खासियत है। इसे खड्ड यानी जमीन के गड्ढे में पकाया जाता था। राजस्थान अपने चटपटे खाने की विविधता के लिए ही नहीं बल्कि मिठाइयों की विविधता के लिए भी जाना जाता है। वहां की पारंपरिक मिठाई तो लप्सी है जो आटे और गुड़ से बनती है, लेकिन विभिन्न अंचल अपनी मावा कचौड़ी और घेवर जैसी मिठाइयों के लिए मशहूर हैं।
अभ्यास 4 और यह परीक्षा समाप्त हुई।
दिस इज द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन।